संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गाने व गाथा नंबर 57 और 58 सुखाधिकार चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में। यद्यपि सुखाधिकार चल रहा है पर अभी तक 5-6 गाथाएं निकल गई, ज्ञान की ही चर्चा कर रहे हैं। जितना भी उपदेश होता है सारे देश पर निगाह डाल के देख लो, और अब तो कहीं जाना नहीं है। जैसे केवली भगवान को एक घर में बैठे ही बैठे सब पता लग जाता है, अपने ही घर में बैठ जाओ और टीवी खोल के सुबह से शाम तक बहुत मुनिराजों के, पंडितों के, विद्वानों के सब के प्रवचन आते हैं। तो सारे देश में क्या हो रहा है उसका नमूना हमें स्वयं अपने घर में बैठे ही मिल जाता है। हर जब भी सुनते हैं कुछ भी तो कोई ना कोई लोभ दिया जाता है। अब अपना एक ही है, भय भय डराना हो तो नरक और लोभ देना हो तो स्वर्ग, दो हमारे हैं। यदि तुम्हें ऐसा करेगा तो नरक में जाएगा, नरकादि गति में पड़ रहेगा, इतनी इतनी प्रतिकूलताएं भोगेगा। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया और जैसा हम चाहते हैं वैसा हम तू किया तो तू स्वर्ग में जाएगा और वहां पर तेरे को सब प्रकार के दुख है। पुण्यकुंडाचार्य के चित्त में ये बात बिल्कुल भी नहीं जमती है। वो कहते हैं कि आखिरकार हम इनको विषय भोग की चाहे तो ही कहते हैं ना जी, कि संसार का सुख जो है जो स्वर्ग में जाने का लोभ हम बताते हैं देते हैं, और इसलिए फिर थोड़ा बहुत सुरक का स्वरूप बताने लगते हैं, कैसे कैसे सुख है वहां, क्या क्या है, कैसे क्या वैभव है, किस तरह की अनुकूलताएं रहती हैं। तो वो एक तरह से लोभ ही कराना हुआ ना, जो वो सुख तो है ही नहीं वास्तव में, वो तो त्यागने योग्य ही है। अब रही बात है कि हमको मोक्ष वाला सच्चा सुख चाहिए और वो अच्छी बात है कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, और नहीं मिले तो बीच में जो भी स्थान पर हमें बिताना पड़े जहां भी सुरग नरक में जैसी भी परिस्थितियों में जितना समय काटना पड़े तो वीतराग भाव से काट लेना चाहिए। जब ये बात कहते तो लोग कहते कि हम नरक नहीं चाहते हैं जाना, स्वर्ग जाना चाहते हैं, और ये भी हमारे लिए अपराध हो गया। तो ये कहते हैं कि नहीं नरक में जाओ तो नरक में चले जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये नरक में जाने के लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि संसार में अनंत काल से अनंत दुख उठाए हैं और ये 2-4 भव होंगे तो जहां जैसे मिलेंगे वो काट लेंगे। अधिकांश तो अच्छे ही मिलते हैं। अब एक राजा सनक है बेचारा, अब अपन को उदाहरण के लिए जैसे वहां भरत चक्रवर्ती मिल जाता है, जैसे राजा सैनिक है, इच्छा एक समय दृष्टि भी है, भगवान महावीर का प्रमुख श्रावक शिष्य भी रहा है ना, और नरक में है क्या? तो एक राम हमारे लिए मिल जाता है हम बड़ा बात कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी जैसी दृष्टि सर्वार सिद्धि में जाने वाले समना दृष्टि की है, पर ऐसी दृष्टि कले नरक में जाने वाले की है। कैसी दृष्टि? इस संसार में जितना समय काटना है वो जैसी भी परिस्थितियों में होगा कट जाएगा। अब उसके बारे में ज्यादा सोचा सोची करने से क्या लाभ है, क्योंकि जरा ही हमको ये ना हो और ये हो संसार में जो हम चुनाव करने की वृत्ति जगती है अंदर, तो उसमें इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि जो हमने वो परम सुख को अपना ध्येय बनाया था उसमें से हमारा चित्त हट जाता है और हम अल्प में ही संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कहा गया था ना अपना कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अंग्रेज लोग बताते थे कि तुम ऐसा करो, प्रांत तुम संभाल लो, केंद्र हम संभाल रहेंगे, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव तुम लड़के तुम जीत जाओ और तुम्हें अपने गांव की जो तरक्की करना हो करो, लेकिन राज्य हमारा ही रहेगा। क्या ऐसा हमें लोग देते थे? और हम कहते कि नहीं, हम तो पूरा, हमें तो पूरा चाहिए, ऐसा नहीं तुम्हारे अंतर्गत नहीं चाहिए। यदि हम थोड़े ही इसमें संतुष्ट होते हैं, नहीं वो कहते हम तुमको जेल में डाल देते हैं, और तुम चाहो तो अभी चुनाव म्यूनिसिपैलिटी का लड़के उसके अध्यक्ष बन के आराम से रह सकते हो, अपने गांव की तरक्की भी कर सकते हो, हैं? तो वो सोचने लग जाए कि भाई जेल में पड़े रहने से तो अच्छा है ना जी। तो इतने से हमारी स्वतंत्रता दूर होती थी, तो हमारे गांधी जी ने नेहरू जी ने क्यों नहीं वो स्वीकार किया? और वो जेल में रहना उन्हें क्यों पसंद किया? उन्हें भी जेल में रहना पसंद था ऐसा नहीं है। हमको तो हमारी जो पूर्ण चाह है उसमें से कोई भी सौदा किसी से करना नहीं है। तो इसमें थोड़े से सांसारिक अनुकूलता में तृप्ति जो है वो उस सुख को से दूर हो जाने वाली वृत्ति है। इसलिए अपने यहां बस चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और तो चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, तो जहां भी स्वर्ग नरक में जाना होगा चले जाएंगे, जो भी स्थिति होगी भोग लेगी। हमारे कोई भी ये कहते कहां जाना पसंद करोगे? मैं रसूल अब भी हम अभी चुनाव करने लग जाए तो 5 मिनट को तुम्हारे लिए ये है कि तुम जो चाहो जहां तुम जाना चाहोगे वहीं तुम्हें भेज देंगे, तो फटाफट देखो कितनी मारामार होती है। वो अमेरिका में क्या होता है, होता है ना स्टोर बड़े बड़े, तो इसमें आधी कीमत कर देते हैं, उन्हें अपना पुराना माल निकालना है क्योंकि नया माल भरना है, नया सीजन आ रहा है। अब पुराना 1 साल तक पड़ा रहेगा, अगले साल वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा तो फिर बिकेगा ही नहीं, तो आपको जी कीमत कर आगे वो निकाल के हटाते हैं। तो कभी कभी 1 रुपए की चीज 10 पैसे में, क्योंकि तुम नहीं बेचेंगे तो कूड़ा उठाने के लिए पैसा लगेगा फेंकवाने का, तो वो क्या करते हैं, उसे नीली बत्ती बोलते हैं। नीली बत्ती नहीं सुनी होगी तुमने, जब वो घंटी बजती है और सारे स्टोर में नीली बत्ती जलने लगती है, और जहां जहां वो नीली बत्ती जल रही है उस एरिया में जितना भी माल है वो सब आप 10% में उठा सकते हैं, और 10 मिनट का समय है, और जो आपको छांटना हो फटाफट जितना समय सकते हो समय। तो ऐसे लोग टूट पड़ते हैं, वे 10 मिनट क्यों, 2 घंटा में क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो सोचेगा तो वो सड़क वाला माल को सोच के लेने वाला तो लेगा नहीं, वो तो छांटेगा ना इसमें से अच्छा। और वो कहता है छांटने को ज्यादा ऐसे समय नहीं मिले, सोचने को ज्यादा समय नहीं मिले, और वो जितने भी उसमें उस वक्त स्टोर में 100-200 आदमी होते हैं वो सब उस माल पे टूट पड़ते हैं, ऐसा समेट समेट के अपने उसमें डाल लेते हैं, और डाल लेते हैं फिर वो उस दिन ले जाते हैं, फिर घर पे कुछ ऐसा भी निकलता है जो फेंक नहीं पड़ता है, कूड़ा होता है ना। मतलब कहते सिलेक्शन कर रहे, मेरा मतलब है कि हमको इस संसार में अच्छी तरह से हमने देख के समझ लिया है, अब हमें सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। कुंद कुंद को तो सुख की चर्चा करना ही पसंद नहीं है, वो तो सुखाधिकार है, वो ज्ञान ज्ञान की ही बात किए जा रहा है। कितनी गाथाएं निकल गई देखो, दूसरी तीसरी गाथा नहीं है, सब किसने खड़ा कर दिया था जैसेनाचार्य ने, लेकिन अभी वही गाथाएं निकलती जाती हैं ज्ञान की ही, कि बस परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं। पर इन 2 गाथाओं में भी यही बात कही गई है, देखो इंद्रियां पर द्रव्य, उनको आत्म स्वभाव नहीं कहा। इंद्रियां तो पर द्रव्य है, आत्मा तो है नहीं, आत्मा का स्वभाव वो नहीं है। अब जो उन इंद्रियों से ही प्राप्त हो, ज्ञात हो, उसे हम प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हैं कि इंद्रियां परद्रव्य हैं, वे आत्मा के स्वभाव नहीं है, और उनसे जो ज्ञात हो उसे हम प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हैं। प्रत्यक्ष तो उसे कहते हैं जो आत्मा के साथ सीधा बरते। कहने का मतलब यह है कि परद्रव्य के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वो हमें नहीं चाहिए। एक दफा निर्णय कर लिया ना तो निशा भोगना तो पड़ेगा ही। राजा स्वर्ग नरक में चले गए तो भोगना ही पड़ेगा, अपन भी जहां चले जाएंगे नरक स्वर्ग में तो अपन को भी वो भोगना ही पड़ेगा। तो वो कहते भोगना पड़ेगा तो भोग लेंगे, हम क्या कहते हम नहीं भोगेंगे। लेकिन आप कहोगे हम उसे चुन लें तो हम चुनेंगे नहीं। अब इसका अंतर समझ में आ रहा ना, चुनते ही तो उसमें उपाधेय बुद्धि हो जाती है, चुनते ही तो वो हमारा जो मेन लक्ष्य है ना उससे हमारा उपयोग नष्ट हो जाता है। और सामने हमारा हमारा कहता है नहीं ठीक है, आप एक ही घंटे मुझे कह दो ना पुण्य के बारे में शांति जी, के धूप में खड़े रहना इंतजार करना है बस का, तो धूप में खड़े रह के इंतजार करना अच्छा है कि छाया में खड़े रह के इंतजार कर ले। क्या कहते कि नहीं कहते कि धूप से तो छाया अच्छी है, अब फंसाया बस तुम्हें, धूप से छाया अच्छी है। वो कहते हैं कि हमें खड़े रहना ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि बस आए और हम बैठे हुए जाए। वहां खड़े रहने के लिए हम आए हैं हा? क्यों तो कहां खड़े रहोगे, जहां जगह मिलेगी वहां खड़े रहेंगे, धूप में तो धूप में, छाया में तो छाया में। मैंने हमारे लिए वो ज्यादा सोचने की जगह नहीं है। मेरे ध्यान एक किताब भी लिखी ना मैंने, तुमने तुम्हें मिली होगी अभी कि नहीं मिली, पढ़ी है, तो उसी पे मैंने ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है कि हमको जो चाहिए ही नहीं तो क्या चाहिए, तुम इसमें क्या पसंद करोगे, ये क्या पसंद करोगे, कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं हम क्या पसंद करोगे। जो माता बहने अपने घर में भी बाहर भी पूछते हैं शाम को क्या बना ले, आप क्या खाएंगे, सबके घर की ये बीमारी है क्या नहीं। बहुत लोग बताते हैं आज पकौड़े बनाओ, आज मंगोड़े बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, चलता ना चलता ही देता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं ठीक है जो बना लो उसको खा लेंगे, जो बनेगा वो खा लेंगे। तो पकौड़े बना ले ठीक है बना लो, कि नहीं पकौड़े नहीं मंगोड़े बना तो मंगोड़े बना। मतलब ये है कि खाने में तो वही सबको है, लेकिन एक को इस विशिष्ट चीज में विशिष्ट प्रकार का रस है और दूसरे को उसमें कोई रस नहीं है। ये सारे संयोग एक से हैं, ऐसा कह लो कि हाँ जो बनाओगे वो भुगत लेंगे, समझे ना, खाली में भोग लेंगे और भुगत लेंगे कि मैं अंतर समझते हो ना है। अरुचि पूर्वक पेट भरना है तो भर लेंगे, मुनिराज जैसा करते हैं। देखो इंद्रियां पर द्रव्य उनको आत्म स्वभाव नहीं कहा, देखो गद्य जैसा पद है ना, गद्य में पढ़ लो चाहे पद्य में पढ़ लो। अरे जो उन्हीं से ज्ञात हो वह प्रत्यक्ष कैसे हो सके, जो उन्हीं से ज्ञात वह प्रत्यक्ष कैसे हो सके, जो दूसरों से ज्ञात हो बस उसे परोक्ष कहा गया, पराधीनत्व परोक्षम, जो दूसरों जिसका होना दूसरे के अधीन हो उसी को तो परोक्ष कहते हैं। और केवल स्वयं से ज्ञात हो वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, वह ज्ञान ही वास्तव में प्रत्यक्ष है। अब इसमें सुख नामक चीज की चर्चा ही नहीं है, सुखाधिकार की गाथाएं हैं और परोक्ष और प्रत्यक्ष बता रहे है ना। वो कहते हैं कि भाई वो सुख तो भोगने की चीज है, हमें इस जगत में कोई भोगने में कोई रस नहीं है, हमें वो भोगने की चर्चा में रस नहीं है। इसलिए वो कहते बात ही नहीं करते हैं। इन गाथाओं का भाव तत्व प्रतीक का टीका में आचार्य अमृतचंद इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, वस्तुतः वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है जो केवल आत्मा के प्रति नियत हो। अरे प्रत्यक्षम अक्षम प्रतियत है ना, कुछ प्रतिपत्ति मजबूरी है। वह इंद्रिय ज्ञान तो आत्म स्वभाव का किंचित भी स्पर्श नहीं करने वाली आत्मा से भिन्न अस्तित्व वाली परद्रव्य रूप इंद्रियों द्वारा होता है। फिर वो इंद्रिय ज्ञान तो आत्मा से अत्यंत भिन्न जो इंद्रियां हैं उनसे होता है, इसलिए वह इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और वो कहते हैं कि आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, परोक्ष तो फिर कोई आगम से जाना ही हुआ हो गया ना। अगर हमें तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, लेकिन तेरे पास ज्ञान ही परोक्ष है, यदि हमें इन आंखों से ही देखना है तो फिर वो हमारा आंखों से देखने को परोक्ष बोलते हैं, तो हमारे लिए प्रत्यक्ष हो कैसे जाएगा। बस थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट होता है तो हम विषदम प्रत्यक्षम के हिसाब से उसको प्रत्यक्ष कहने लगते हैं और उसकी अपेक्षा दूसरे को परोक्ष कहने लगते हैं, समझे ना। और उसमें कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, उसमें इंद्रियाधीनता समाप्त नहीं होती। ये कहां कौन सा पेज है, बदल गया इधर। हाँ, वस्तुतः वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है जो केवल आत्मा के प्रति नियत हो। यह इंद्रिय ज्ञान तो आत्म स्वभाव का किंचित भी स्पर्श नहीं करने वाली आत्मा से भिन्न अस्तित्व वाली परद्रूप इंद्रियों द्वारा होता है, इसलिए यह इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। निमित्त भूत परद्रव्य रूप इंद्रियां, ये निमित्त है मतलब उसकी मन, परोपदेश, उपलब्धि, मन ज्ञानावरण कर्म का सूक्ष्म संस्कार या प्रकाश आदि के द्वारा होने वाला स्व विषय भूत पदार्थों का ज्ञान पर के द्वारा होने से परोक्ष कहा जाता है। यहां पर एक बार क्षुल्लक मनोहर लाल जी बरनी आए थे, नाम सुना होगा, सहजानंद बरनी, छोटे बरनी जी कहलाते थे, तो बहुत अच्छे विद्वान थे, संस्कृत के अध्ययन उन्हें बहुत अच्छा था, धारा प्रवाह संस्कृत में लिख सकते, संस्कृत के श्लोक ऐसे लिख सकते थे बिल्कुल धड़ाधड़। उन्होंने उनका गीता लिखी थी, उन्होंने अपने जैन धर्म के सिद्धांतों को लेकर ऐसी कोई समयसार गीता ऐसा कुछ लिखा था, उन्होंने गीता जैसे ग्रंथ लिखा था, तो ऐसा वो लिख सकते थे। तो अपने यही आदर्श नगर में आए थे, तो हम लोग उनसे मिलने गए थे, फिर वो स्मारक में भी आए थे और उनका यहाँ प्रवचन भी कराया था बैठ के। तो उन्होंने एक बात कही थी यहाँ पर, बहुत मार्मिक है, निमित्त उपादान के संदर्भ में, वो भी निमित्त उपादान का जैसा अपन लोग मानते हैं लगभग वैसा ही मानते थे, लेकिन अपने जो खंडन करते हैं ना, अपना कम अध्ययन करने वाले तो निमित्त की बस देखो, वो हाथ वो शेर है, तो शेर की पर्याय में उसे मुनिराजों का निमित्त हो गया, और मारीच की पर्याय में निमित्त नहीं हुआ, आदिनाथ जैसे उसके दादाजी कितना बढ़िया निमित्त थे, बाप शरद चक्रवर्ती था, तो ऐसे हम उदाहरण दे दे करके और निमित्त का खंडन कर देते हैं क्या। उनने ये कहा था कि ये सब निमित्त देहभूत निमित्त हैं, मन जैसे हम जिनको जानते हैं ना तो वे गेय हैं, ऐसे निमित्त हैं, माने अत्यंत स्थूल बाहर के निमित्त हैं, और अंतरंग निमित्त तो वो कर्म का उदय क्षयोगसम है, समझे ना। तो हम उसकी तरफ तो बात ही नहीं करते हैं। उनका एक शब्द था, मैं अभी भूल रहा हूं, कि मतलब हम इन ऐसे निमित्तों के उदाहरण दे दे करके घी का घड़ा और फला फला, और हम लोगों को उसकी खंडन कर देते हैं। लेकिन जिन जैसे निमित्त कि जिनकी उपस्थिति अनिवार्य है, माने जिनमें अन्वय और वितरेक दोनों ही घटित होते हैं, उस निमित्त की, उदय रूप निमित्त की हम बात नहीं करते, आश्रयभूत निमित्त की बात कहते हैं। ये शब्द थे उनके, ये तो आश्रयभूत निमित्त हैं। जैसे किसी ने हमें गाली दी और गाली हमने सुनी, तो गाली निमित्त हुई ना, और हमें गुस्सा आया, तो हमारे गुस्से का निमित्त तुम्हारी गाली है, और हमारे अंदर में क्रोध कर्म का उदय है वो है, तो दो निमित्त हो गए ना। एक इसको बोलते आश्रयभूत निमित्त, हमने जिसे सुना माने जाना हुआ ना, तो वो आश्रयभूत निमित्त है, उसके आश्रय से हमको क्रोध आया है, और हमें ये है उदय रूप निमित्त, ये ज्यादा मजबूत है, ये अंतरंग निमित्त है और वो बहिरंग निमित्त है। हाँ, समझे ना। यदि क्रोध कर्म का उदय होगा तो क्रोध हो गई होगा, और क्रोध हो रहा है तो गारंटी से क्रोध कर्म का उदय होगा ही। ऐसा नहीं कि किसी ने गाली दी ही होगी, किसी ने गाली नहीं दी हो तब भी गुस्सा आ सकता है। 25 साल पुरानी किसी ने गाली दी थी, उन्हें आज याद कर करके गुस्सा करता है, उन्हें आज याद कर करके 25 साल पुरानी गाली को उसमें से निकालता है अपनी धारणा में से, और गुस्सा करता है। तो हम जितने भी उदाहरण देते हैं वो तो आश्रयभूत निमित्त के उदाहरण देते हैं, उदय रूप निमित्त की बात नहीं करते हैं। उनने ये बात खास करके एक कही थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो उदय रूप निमित्त तो देखने में नहीं आता है। क्या होता है कि हमने शास्त्र में ये व्याप्ति पढ़ ली, कौन सी, कि जब जब क्रोध नामक कसार का भाव होता है तब तब नियम से क्रोध नामक कर्म का उदय होता है। तो इस व्याप्ति के आधार पर हम अनुमान करते हैं कि हमें क्रोध नाम का कर्म का उदय होगा, वो हमें दिखता नहीं है, तो हम उस पर गुस्सा करके क्या करें। ये सामने वाला हमें गाली दे रहा है, तो हमको इसको निमित्त माने, वो इसको ही करता माने, तो इसकी पिटाई शुरू कर दें, कुछ ना कुछ करें, हमें दिखता है। अब वो जो उदय रूप निमित्त है वो तो हमें दिखता ही नहीं, वो तो हमें हमारा गुस्सा दिखता है, और उससे हमने वो शास्त्र में पढ़ लिया है कि जहां जहां गुस्सा आ रहा होता है तो वहां क्रोध कर्म का उदय होता है। तो अभी क्रोध कर्म का उदय होगा, हम ऐसा अनुमान करते हैं, तो वो परोक्ष हो गया ना, अत्यंत परोक्ष हो गया, और वो प्रत्यक्ष दिखता है सामने, साम्यभारक प्रत्यक्ष से ही है ना। तो वो कहता है कि सामने वाला जो गालियां दे रहा है वो तो प्रत्यक्ष है, और जो ये तो हमने शास्त्र के आधार से समझा, तो हमने ये और किया कि गोमरसार पड़ के एक नई बीमारी और खड़ी की। अभी तक तो इतने ही शत्रु थे सामने ही, सामने वाले जो हमें भला बुरा कहते थे, प्रतिकूल प्रवर्तन करते थे, अब ये ज्ञाना बनी दर्शना बनी, ये नए शत्रु और खड़े हो गए। कम से कम अभी तक तो हमें नहीं जानते थे ना, तो हमने शास्त्र पढ़ के क्या उपलब्ध किया, नए शत्रु और हमने गिन लिए। लेकिन वो कहते भाई कि हम तुम्हारा निमित्त पैसे ध्यान हटाना चाहते हैं, तो निमित्त पैसे सीधा तो हटता नहीं तुम्हारा, सामने वाले ने गाली दी इसलिए तुम्हें गुस्सा आया, ये हम समझाते हैं कि भाई इससे नहीं आया। टूर्नामेंट जी उदाहरण भी देते हैं कि ससुराल में जाते हैं तो गालियां देते हैं तो क्रोध नहीं आता है, और हम मिठाई बांटते हैं, पतासा बांटते हैं, ऐसे उदाहरण देते हैं, लेकिन हम समझ में नहीं आता, सामने वाला हमें प्रत्यक्ष गाली देता देखो हम ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं पहले हम प्रत्यक्ष दिखने वाले निमित्त से तुम्हारा ध्यान हटाना था, उससे नहीं। उपादान तुम्हारा आत्मा है और निमित्त तुम्हारे कर्म का उदय है, अब दो ही हो गए, तुम उसको बेचारे को बीच में तीसरे को क्यों लाते हो? क्या ऐसा कह के जो पड़ोसी से हम राग द्वेष करते हैं उनसे अपना उपयोग हटाते हैं, फिर जब इधर आएंगे तो हमने दिखता तो है नहीं वो क्रोध, हम गोमर सार खोलेंगे किस कर्म के उदय से क्या होता है कैसा होता है, और जैसा जैसा हमें तीव्र गुस्सा आ रहा है तो तीव्र कर्म का उदय होगा, तो हम उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो क्रोध गायब हो जाएगा। और हमारा प्रयत्न ज्ञान की तरफ हो गया ना, इसे तो हम मारने दौड़ सकते हैं, इसके तो बदले में हम चार गालियां दे सकते हैं, अब उसका क्या करें, है ना? हमें बाहर से ऐसा करने को कुछ नहीं दिखता है ना, तो फिर हम उसी तत्व विचार में चले जाते हैं कि ऐसा क्या होता है कैसे होता है, तो वो ठंडा पड़ जाता है, तो हम वहां से उपयोग यहां को लाते हैं। और जब यहां पर आकर तुम कर्म नहीं उलझ के रह जाओगे तो कहेंगे कि उपादान तो तेरा आत्मा है, उसी से सब कुछ हुआ है। अब ये देखो अपन को एक हथियार और मिल गया रहता है, क्या मिल गया कि वो जो कर्म का उदय निमित्त है ना जिससे तुझे गुस्सा आ रहा है, तेरा ये गुस्सा आना आज ना आपको पता था कि नहीं, मैंने तब से नक्की है कि तुझे इस समय ऐसा गुस्सा आएगा, सुनना ध्यान से, और तब ये कर्म बना था, जो कर्म अभी उदय में आया है क्रोध ये तो बना ही नहीं था, और वो गुस्सा आना तो तब से नक्की था, तो मैंने पूरा अब वो कर्म पे नहीं अब हम पे ही निर्भर हो गया, उस पे से ध्यान हटाने की बात है कि सब बिना कर्म के उदय के हो जाएगा, फिर गुस्सा के नहीं होगा, तो बीच में वो भी बन जाएगा, वो भी उनके ज्ञान में आ गया कि कब तुमको वो बन जाएगा ऐसा कर्म, और फिर वो कब सत्ता में पड़ा रहेगा, और फिर कब उदय में आएगा, और एक बीच में एक उदीर्णा और चलती है, उसमें से इन कर्मान योग वालों को लगता है कि कुछ रास्ता है, माने उस जो कर्म जो स्वसमय में उदय आने वाला था उसके पहले भी उसे उदय लाया जा सकता है, जो भी कारण हो वे कारण मिले तो उदीर्णा हो जाती है ना, क्यों उदीर्णा करके हम खपा सकते हैं। लेकिन वो भाई साहब वह किरणबद्ध पर्याय का चक्कर इतना ज्यादा है कि वह उदीर्णा भी होगी वो भी नक्की है, फिर इतना बांधेगा इतने काल तक बंधा रहेगा, फिर उसकी इतने में उदीर्णा हो जाएगी, उस वक्त ऐसे ऐसे भाव होंगे, तो वो जो उतना वहां जब हम पहुंच जाते हैं ये सब देव तक, तो हमारे सारे प्रश्न का हल उसमें सारे निमित्तों पर से हमारा ध्यान हट जाता है, फिर तो हमारे उपादान में जो योग्यता थी हमारा जो होना है वही होता है, नहीं तो फिर उदीर्णा कैसे होती है, फिर उदीर्णा को रोकें, उदीर्णा को कर दें ले दें, फिर हम जहां हमें अपने उपयोग को नहीं लगाना है, जहां हमारा हाथ में कुछ भी करना नहीं है व्यर्थ में हम उधर उलझ जाते हैं, वो हर वाक्य जैन धर्म के विरुद्ध है जो हमको जहां हमारा कुछ नहीं चलता है उधर हमारे उपयोग को उलझाए। समझे ना, हमारे उपयोग को उधर उलझाए वो हमारा हमको इष्ट नहीं है, तो यदि हम वो जो बड़ा सिद्धांत है उस पर जाते हैं तो हमारी सारी समस्या हल होती दिखती है। अब वो चाहे उदय रूप निमित्त हो, चाहे आश्रयभूत निमित्त हो, चाहे वो अंतरंग निमित्त हो, चाहे बहिरंग निमित्त हो, तो आखिरकार पूज्यपाद स्वामी ने अष्टोपदेश में तो ऐसे ही कह दिया कि अग्नि को विघ्न नहीं बनाया जा सकता, विघ्न को अग्नि नहीं बनाया जा सकता है, वो सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के समान ही उदासीन है। भले ही दो प्रकार के भेद निमित्तों के किए, उदासीन निमित्त प्रेरक निमित्त, लेकिन कोई निमित्त प्रेरक मेरक नहीं होता, सभी धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही हैं। तो वो जो भेद बताए थे वो तो आचार्यों ने ही बताए थे हमें, तो वही आचार्य जब अध्यात्म के जोर में आते हैं वो तुम्हें बताते हैं, तो कहते काय के प्रेरक मेरक, कुछ प्रेरक मेरक से कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या अभी अपन ने इतना महत्व दे दिया उसको, क्या आप अपना प्रेरणा सूत्र बताइए, आप आए वैसे ही आग लगी है, वैसे ही वो उसके दिमाग में वो ज्यादा घूमता है बताने को, और हमने एक और पॉइंट दे दिया, ये तो तुम्हें बताना ही बताना है, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। फिर वो उधर ही कोई घूमने लगता, फिर वो उधर कोई घूमने लगता, एक तो निमित्त में प्रेरक में, फिर वो निमित्त यानी जितने जो भी है तुम्हारा उपादान के बिना तो तुम्हें यहाँ आ गई, समझ रहे क्या कह रहा हूँ। उपादान की योग्यता थी ना कि तुमको यहाँ रहना है, इतने दिनों पर रहोगे, जैसे अचानक तो जी कुछ होने गया है, जैन धर्म में अचानक तो कुछ होता नहीं है, तो उसमें फिर एक इस निमित्त से हटाया था, उस निमित्त पर, उस निमित्त से ले जाया था, उस निमित्त पर, किसी न किसी निमित्त पर ही जा करके हम उसको टिका देते हैं, और वो उसी 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 की विचार में लग जाता है। वो बेचारे गौतम स्वामी आए थे, वे अपनी पात्रता से आए थे, उनकी पात्रता पक गई थी, अब बस वो इंद्र ले आया था, इंद्र ले आया था, इंद्र ले आया था। एक बात पूछूं कि इंद्र ने जाके कहा था कि इस छंद का अर्थ मुझे नहीं आता है और मेरे गुरु ध्यान में बैठे हैं, तो इसका अर्थ मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये उसने सत्य बोला था कि झूठ, झूठ बोला था तो उसे पाप लगा होगा कि अब निकालेंगे आपके कोई ना कोई रास्ता, उसे पाप तो हम लगवा नहीं सकते, झूठ भी बुलवाएंगे और पाप भी नहीं लगने देंगे। झूठ बोलना यदि पाप है तो उसे पाप लगा होगा, समझ लो उसने इतना पाप किया, आप समझ लो, आप समझ लेना आप जी में, लेकिन हमको नहीं नहीं कैसे नहीं साफ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने अच्छा काम किया, भले का काम किया, एक दिन दूसरे दिन का भला कर सकता है। इंद्र तो समझता था ना, कि सोदन बिंदु भी नहीं समझता था, वो तो छायक सम्मय दृष्टि था ना, मतलब हमारी वो निमित्ताधीन इतनी दृष्टि इतनी ज्यादा है कि उधर ही उधर लौट लौट के जाती है। गुरुदेव कहते इतनी धुनाई करो, इतनी धुनाई करो कि उधर जाए ही नहीं, लेकिन लौट के हम एक पैसे हटते हैं तो दूसरे निमित्त पर, दूसरे से हटते हैं तो तीसरे निमित्त पर, चौथे से हटते हैं तो पांचवें निमित्त पर, है किताब में अटक जाते हैं, किताब से हटते हैं तो उजेले में अटक जाते हैं, प्रकाश निमित्त है, गुरु जी निमित्त है, उनका गला अच्छा हो तो वो निमित्त है, पचास पचास कितने कितने, तो कितनी पराधीनता है, निमित्ताधीनता कहो सर पराधीनता कहो, एक ही बात है, देखो ये परोक्ष ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो पर से उत्पन्न होने से पराधीनता के कारण, मैंने पर से उत्पन्न हुआ इसलिए वो पराधीन है, वो पराधीनता के कारण असमंत होने से, अन्य द्वारों द्वारा आवृत होने के कारण, मात्र कुछ पदार्थों को जानने से अन्य पदार्थों को जानने की इच्छा के कारण, समल होने से असम्यक अवबोध के कारण, अवग्रहादि सहित होने से क्रमशः होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद के कारण परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है, इसलिए वह परमार्थ सुख नहीं है। अब एक एक का विचार करो, इसमें इतने विषय आ गए व्याख्यान देने के लिए कि कई दिन निकल सकते हैं। देखो कौन सी, कि पर से उत्पन्न हुआ इसलिए पराधीन है वो, तो पराधीनता के कारण क्या है? चश्मा तेज रह गया वस्तुतः वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है जो केवल आत्मा के प्रति नियत हो। वह यह ज्ञान मेरे असलियत में एक मेरा ये भी है कि मैं आगे पीछे पढ़ता रहता हूँ। जब भी प्रवचन करता हूँ तो आगे पीछे आठ दस गाथा आगे की आठ गाथा पीछे की पढ़ता रहता। तो मेरे लिए तो सब पढ़ा हुआ जैसा ही लगता है मैंने ऐसा नहीं लगता कि ये तो अभी आया ही नहीं अभी भी मतलब जैसे मैं यहाँ आपके प्रश्न करने आता हूँ तो कम से कम आधा घंटा तो इसमें लगाता ही होऊंगा आगे पीछे से सब उसका प्रसंग वगैरह सब देख करके है ख्याल में। बस होता हुआ ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है जो केवल आत्मा के प्रति नियत हो। यह इंद्रिय ज्ञान तो आत्म स्वभाव का किंचित भी स्पर्श नहीं करने वाली आत्मा से भिन्न अस्तित्व वाली प्रद्युत रूप इंद्रियों द्वारा होता। अब डेढ़ लाइन का वाक्य मुफ्त में बना दिया क्या है देखो। यह इंद्रिय ज्ञान अब आत्म स्वभाव का किंचित भी स्पर्श नहीं करने वाली आत्मा, ये इतने विशेषण आत्मा के हैं, इससे भिन्न है। कौन है भिन्न? ये इंद्रिय ज्ञान। ये इंद्रिय ज्ञान आत्मा से भिन्न है। कैसी आत्मा से? कि जो आत्म स्वभाव को किंचित भी स्पर्श नहीं करती ऐसा ये इंद्रिय ज्ञान वाली आत्मा से भिन्न अस्तित्व वाली और परद्रव्य रूप जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा होता है। इसलिए इनको प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हैं? इन्हें कहा था ना आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वजह तो आत्मा से एकदम भिन्न है, इसलिए इसको किसी कीमत पर प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है। निमित्त भूत परद्रव्य रूप इंद्रियां मन, ये पढ़ लिया था अपने, परोपदेश उपलब्धि संस्कार या प्रकाश, ये इतने निमित्त हैं। उपदेश निमित्त है, इंद्रिया निमित्त है, मन निमित्त है, उपलब्धि निमित्त है, संस्कार निमित्त है, प्रकाश उजेला निमित्त है। इतनी चीजें मिले तब अपन ये दो लाइनें पढ़ पाए। अपन को अभ्यास है तो पता नहीं लगता कि जैसे कुछ हो रहा, लेकिन ये लाइट चली जाए अभी तो एक मिनट में पता चल जाता है कि कितनी इसकी उपयोगिता है। दिखती है ना, आंख से कम दिखने लग जाए, चश्मा नहीं हो, मतलब इनमें से एक आधी चीज बिखर जाए तो हम नहीं देख पाते। अब इतनी सब चीजें मिले फिर होने वाला स्व विषय भूत पदार्थों का ज्ञान, और फिर भी वो उसका इंद्रिय का विषय जो ज्ञान है वो ही जानेगा। उस पुद्गल में तो रूप रस गंध स्पर्श सब है, लेकिन ये आंख के माध्यम से जो जानना होगा वो सिर्फ रूप का होगा, है ना। परोक्ष कहा जाता है। अब अंतःकरण, इंद्रियां, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार या प्रकाश आदि सभी परद्रव्यों की अपेक्षा रखे बिना एकमात्र आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों को एक समय में ही व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान केवल आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष कहा जाता। अब केवल ज्ञान में इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ना उजेले की, ना अंधेरे की, ना आंखों की, ना इंद्रियों की, ना किसी चीजों की। देखो कैसी विचित्र बात है, अनंत भगवान की शरीर वज्रभृषभ नारायण सेनन का है ना, वज्रभृषभ नारायण सेनन के बिना तो कभी वो मोक्ष होता नहीं। तो उनका ये शरीर वज्र का बना है और इंद्रियां क्या है शरीर के अलावा? इस शरीर में सारा शरीर स्पर्शन इंद्रिया, नाक कान ये सब इंद्रियां ही तो हैं। तो ये इंद्रियां वज्र की बनी है, कितनी मजबूत है, अपनी तो कमजोर है, इतनी मजबूत इंद्रियां हैं और बिल्कुल काम नहीं आती, केवल ज्ञान है। अब क्या करें उन मजबूती का, इस बात के लिए मजबूती चाहिए थी कि अपन को थोड़ी दूर तक का दिखता है और उनको सबसे अधिक जितना दिखता है ना, कहते भरत चक्रवर्ती अपने महल में बैठे बैठे वो 96वां खंड था ना, उसके ऊपर की मंजिल में जाकर वहां से सुबह सूर्य उगता है तो वहां पर अकीर्तन चैत्यालय है सूर्य में, तो अकीर्तन चैत्यालय में जो भगवान की मूर्ति विराजमान है वहां से सीध पड़ती है तो वहां के दर्शन वो कर लेते हैं। तो उससे नक्ति होता है कि मनुष्य की चक्षु इंद्री अधिक से अधिक कितना लंबे दूर तक का देख सकती है। तो अब ये कितनी लंबी दूर है, तो नील पर्वत पर वो सूरज उगेगा और ये भरत क्षेत्र में ये है। तो अब ये कितना इनका घेरा कितना है, ऐसा हिसाब लगाते हैं ना उसमें, तो 7 घंटे का उसमें से निकलता है और वहां से यहां आने में 9 घंटे लगते हैं। सूर्य को पूरे घेरे में 60 घंटे लगते हैं तो 9 घंटे, तो 60 का भाग देके 9 का गुणा कर दो तो जितने 1 लाख योजन में तो जितने माइल निकले उतने माइल दूर तक की चक्षु इंद्री देख सकती है, ऐसा निकाला है। तुम्हें गोमर सार में पढ़ा नहीं होगा, तुम्हें हम तो तब पढ़ा था जब छोटे थे, समझ में आया कुछ के नहीं अंदाज, तुम्हें आया नहीं चक्षु इंद्री का विषय। चक्षु इंद्री का विषय निकाल के बताते हैं इंद्री मायगणा में होगा, देखना इंद्री मायगणा में। अभी जो मैंने कहा उसमें तो कुछ पकड़ में आया कि नहीं आया, माने सूर्य जितना मैं पूरा ये चक्र काटता है तो इसमें 2 सूरज हैं और 2 चंद्रमा हैं, तो वो दो सूरज हैं तो वो 60 घंटे उसे लगते हैं मेरे ख्याल से, और अब वो यहां से यहां आता है तो उसे 9 घंटे लगते हैं। तो वो सारा समय इतने माने एक कितने कितना 1 लाख योजन क्या पड़ता है उसका, 3 लाख योजन क्या हो जाता है, ज्यादा मैं समझता नहीं गणित में, पर इस तरह से निकालते हैं और उसमें इतने 1000 मील इतने से इतने अपने दूर तक की भरत चक्रवर्ती की आंख देख लेती है, जब देख लेती है तो उतना दूर हमारा चक्षु इंद्री का विषय हो गया, माने इतनी मजबूत आंख है, इतनी दूर तक के देखने वाली आंख है और किसी काम की किसी काम नहीं आती। बोलो, और हमें काम चाहिए रोजीना तो 15 मिनट में थक जाती है, दर्द होने लगता है। ये तो हो गया। हाँ, इस गाथा में यही अभिप्रेत है कि सहज सुख का साधन भूत यह महाप्रत्यक्ष ज्ञान ही उपादेय है। अब इसमें 2 शब्द बहुत मार्मिक हैं। एक तो है सहज सुख का साधन भूत, जो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने एक किताब लिखी उसका नाम रखा उन्होंने सहज सुख साधन। अभी सहज सुख साधन शब्द कहीं भी अपने इतना पढ़ने में आता ना, कहीं अन्यत्र देखने में नहीं आया। तो ये उन्होंने पढ़ा होगा, इस पर उनका उपयोग बहुत स्थिर हुआ होगा तो उनको वो नाम अच्छा सूझा, सहज सुख साधन किताब का नाम उन्होंने रखा सहज सुख साधन। और दूसरा महाप्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष में भी महा, ये जो महाशब्द है ना हर जगह कोई अच्छा नहीं होता है, यहां तो बहुत ही अच्छे के अर्थ में है, तो महापंडित महावैद्य ये अच्छे नहीं होते, इनका अर्थ अच्छा नहीं होता है, जानते हो, वहां महा लगा दें तो वो हो जाता है वैद्यराज नमस्तुभ्यम तुम यमराज बिरको धरा यमराज प्राणा हरती तुम प्राणान धना नीचे। ऐसा समझने के नहीं, हे वैद्यराज, राज वैद्य है ना, महावैद्य है, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार हो, वैद्यराज नमस्तुभ्यम तुम यमराज बिरको धरा, तुम तो यमराज के बड़े भाई हो। है? क्यों कि यमराज तो अकेले प्राण हरता है, तुम प्राण भी हरते हो धन भी हरते हो, ध्यान से समझे ना, वैद्यराज नमस्तुभ्यम
तूने हमें राज बिरको धरा, वैद्य प्राण प्राण हरती, वैद्य प्राणान हरती तुम, वैद्य नहीं यमराज प्राणान हरती तुम प्राणान धनानि च, प्राण को भी हरते हो तो वहाँ राज शब्द है, महाशब्द है, ये ऐसे व्यंग के अर्थ में भी आता है, है? तो जब पंडित टोडरम जी को महापंडित कहते थे ना तो एतराज कहते नहीं, महापंडित नहीं कहते, पंडित राज, पंडित प्रवर और भी जितने नाम लगाना तो लगाना, लेकिन महापंडित कहने का महावैद्य महापंडित, इनके साथ जब महाशब्द लगाते हैं तो उनका अर्थ उल्टा भी हो जाता है, वो महान के ही अर्थ में नहीं रहता है, वो व्यंग हो जाता है, है? ये तो पोंगा पंडित है, पोंगा पंडित का मतलब क्या होता है जानते हो? हंस क्यों रहे जानते हो उसका अर्थ क्या होता है? पोंगा पंडित जो कहते हैं तो उसका जो वर्तमान में अर्थ चलता है वो तो जानते ही होगे ना, है? लेकिन वो अष्टाष्टम में पुंगव है, है ना, पंडित प्रवर, पंडित पुंगव, ये सब श्रेष्ठ के अर्थ में है। अब वो बिगड़ते बिगड़ते उसके बोलते हैं अर्थ लाघव, विज्ञान के हिसाब से वो है ना, भाषा विज्ञान के अर्थ का लाघव हो जाता है, वो जिसका बहुत महान अर्थ होता है फिर धीरे धीरे उसका अर्थ कमजोर पड़ जाता है। यहाँ महाप्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग सकल प्रत्यक्ष अर्थात सर्वदेश प्रत्यक्ष के अर्थ में किया गया है। शास्त्रों में अवध ज्ञान और मन पर ज्ञान को भी प्रत्यक्ष माना गया है, पर ये दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं, मात्र रूपी पदार्थ को ही जानते हैं, खुदगल को ही जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते, अतः ये देश प्रत्यक्ष ज्ञान सहज सुख के साधन नहीं है। पर के संयोग बिना आत्मा सहित लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान ही सहज सुख का साधन है, यह बताने के लिए ही यहाँ महाप्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। इन गाथाओं में सब कुछ मिलाकर मात्र इतना ही कहा गया है कि इंद्रियां, प्रकाश, उपलब्धि, संस्कार आदि परद्रव्यों के संयोग से होने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और पर के संयोग के बिना सीधा आत्मा से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। पराधीनता का सूक्ष्म परोक्ष ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का कारण नहीं हो सकता, अतीन्द्रिय सुख का कारण तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। अब कल 59वीं गाथा।